अखिलेश ने क्या बोला, मोदी ने क्या बोला, या फिर स्मृति ईरानी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, इस पे हम ज़्यादा फोकस रहते हैं, बशर्ते इसके के जो असल मुद्दे हैं उस पे। आप तो एक एक आदमी ने मुझे बाइक बैठाया पोस्टमार्टम जो हाउस था वहाँ पर ले जाकर उसने कर दिया, उसने कहा कि यहाँ पर जितनी लाशें हैं तुम गिनते रहना। माँ ने अपनी जो उसकी सास थी, उस आदमी की जो सास थी, अपनी बेटी के पेट पर लात मार के उस बच्चे को मारने की कोशिश की थी। मतलब 2500 रुपये मांगे जाते हैं, उस 2500 के बदले वो जानते हैं क्या करते हैं, अपनी जान दे देते हैं। बैठे थे कमरे पे, ख्याल आया कि छोड़ देते हैं, और फिर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद ये नहीं पता था कि आगे होगा क्या, लेकिन ये पता था कि करना क्या है। ये हमारे पहुँचने से उनको पता चला कि देश में इलेक्शन हो रहा है, और वो खुद हमसे पूछ रहे हैं कि अच्छा ऐसा कोई इलेक्शन हो रहा है क्या, कहाँ वोट डालना है, क्या करना है, कि हम अपने ओर से कुछ ना कुछ ऐसा दे सकें कि हम अपने देश में कुछ बेहतर कर सकें, चाहे वो पॉलिसीज पर हम सवाल उठा सकें, या फिर किसी व्यक्ति के व्यक्ति विशेष के जीवन में कुछ बेहतर कर सकें। तो यार 24 के बाद से ये और ज़्यादा टफ होने वाला है, ये इतना टफ हो जाएगा कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
Hello friends, welcome to another intriguing episode of the fourth dimension. Yahan pe hum we go beyond the headlines, beyond the fame, and even beyond the ordinary to discover the extraordinary. Is series mein hum explore kar rahe hain kuch hidden layers ko, kuch unique perspectives ko, aur kuch unspoken thoughts ko jo hamare guests ke hain, jo ki shayad aapko kahin aur nahi milenge. To aaram se baithiye, relax kijiye, aur prepare to be amazed as we unravel what makes our guests not just a public personality, but a human being full of depth and dimension. Aur is episode mein, we are going to explore the fourth dimension of Mr. Ranvijay Singh. Aur ye, khair, main inke bare mein detail mein, main khud kya batau, main request karta hoon. Ranvijay ji, aapse hi shuru karte hain. Aap please, zara short mein, sankshipt mein, aap batana chahenge apni life story abhi tak ki.
अवरिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे इसमें बुलाने के लिए। मैं अपने बारे में ज़्यादा क्या ही बोलूँगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे बताना है दर्शकों को, तो मैं इतना बताऊँगा कि मैं एक फ़िलहाल एक पत्रकार हूँ, और यूपी खास तौर से मैं कवर करता हूँ। मेरी अगर शुरुआत आप देखें तो एक छोटे से जिले का मैं लड़का हूँ, देवरिया करके यूपी में पड़ता है एक ज़िला है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और फिर लखनऊ में हमारी पढ़ाई हुई। अलग अलग संस्थानों में हमने काम किया, जिसमें जैसे कि भास्कर आपने नाम सुना होगा, आज तक का नाम सुना होगा, गाँव कनेक्शन का आपने नाम सुना होगा, इंडिया स्पेंट का नाम सुना होगा, इस तरीके से अलग अलग हमने संस्थानों में काम किया। फिलहाल मेरा जो फोकस होता है वो मैं डेटा पे जो स्टोरीज होती हैं वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, खास करके जो हमारा एक बहुत बड़ा इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र, उस इलाके से जो कहानियां निकल पाती हैं उन कहानियों को मैं लोगों तक लाने की कोशिश करता हूँ डेटा के आधार पर। यही एक छोटा सा काम कर रहे हैं जो है फिलहाल में।
नहीं, आई थिंक हाँ जी बिल्कुल, आपने जो ये डेटा वाली बात की, और उसमें वही आ जाता है कि फैक्ट बेस्ड, रैशनैलिटी बेस्ड जो आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं गांव के बारे में, रूरल इंडिया के बारे में, दैट इज वो बहुत यूनिक है। तो आई थिंक वहीं से हमारा भी कनेक्शन वहीं से शुरू हुआ था। तो आपने आप हमें बता सकते हैं वो कौन सा लम्हा था, वो मोमेंट जब आपने डिसाइड किया कि आप ऐसे एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ही कहूंगा, हालांकि आपने अलग अलग संस्थाओं में भी किया, ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बनने का डिसाइड किया, वो आपका जो मतलब क्या ड्राइव थी जिसको आपने जिसने आपको इस पाथ पे की तरफ धकेला?
देखिए, मैंने अलग अलग संस्थानों में जब काम किया तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि एक ढर्रा है आप एक, और सारा हमारा फोकस जो होता है वो पॉलिटिशियन के इर्द गिर्द होता है, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ज्यादा आप अभी आप खबरें भी देखें तो मुझे लगता है कि 90% जो फोकस है इंडियन मीडिया का, अब मुझे मैं बाहरी उस पर नहीं बात करूंगा, इंडियन मीडिया का, वो पॉलिटिशियन क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अखिलेश ने क्या बोला, मोदी ने क्या बोला, या फिर स्मृति ईरानी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, इस पर हम ज्यादा फोकस रहते हैं, बशर्ते इसके के जो असल मुद्दे हैं उस पर। आपको मुद्दों वाली जो खबरें होती हैं गिने चुनी चुनने मिलती हैं। मैं भी वही काम करता था, दिन की 10 खबरें लगाया करता था अलग अलग उस पर, कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा मसाला खबरें, थोड़ा सा जो आज जिन खबरों को हो सकता है कि मैं क्रिटिसाइज करता था, एक टाइम था कि मुझे भी वो लगानी पड़ती थी क्योंकि मैं उस जॉब में था, मुझे हाँ तो लेकिन ये कहीं ना कहीं जो चीज सोच के हम आए थे वो चीज थी नहीं। तो एक दिन ऐसे ही अचानक से ख्याल आया, नोएडा में बैठे हुए थे तो बड़ा ही मतलब अजीब सा महसूस हो रहा था, लगभग 9-10 महीने हो गए थे आज तक में, और बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, बस खबरें लगाए जा रहे थे, हमें वीडियो भी करने का ऑप्शन मिल रहा था, तमाम चीज़ें थी, लेकिन बहुत मज़ा नहीं आ रहा था जो करना चाह रहे थे, जो आप जुड़ना चाह रहे थे। तो एक रोज ऐसे ही बैठे थे कमरे पे, ख्याल आया कि छोड़ देते हैं, और फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद ये नहीं पता था कि आगे होगा क्या, लेकिन ये पता था कि करना क्या है, ये पता था कि जहाँ से चले हैं वहीं वापस लौट जाना है, जो कि हमारा क्षेत्र है मतलब यूपी, वहाँ वहीं जाना है और वहीं की खबरें करनी, क्योंकि यार इतना कुछ है वो आ क्यों नहीं रहा है, मतलब कहीं खबरों में है क्यों नहीं जो कि दिख रही है। तो ये वैसा था, मैं यूपी लौटा, यूपी लौटने के बाद में एक लखनऊ में जब मैं गया तो अलग अलग मैं छोटी छोटी खबरें कर रहा था लोगों की, किसानों की, मुझे एक बड़ा नज़र आया जहाँ से मुझे लगता है कि लोगों में मेरी पहचान गई, वो है जब मैंने गोमती की यात्रा की, एक नदी जो कि इतने लोगों को जोड़ती है, वहाँ से वो स्टार्ट होती है माधव टांडा से और आगे जाके जौनपुर में जब मिलती है, तो वो जब मैंने उसको कवर करना स्टार्ट किया तो थोड़ा लोगों के उसमें आया कि इस तरह के भी मतलब वो किया जा सकता है, मुझे भी समझ में आया, और लोगों के शायद जहन में गया होगा, जानकारी में गई होगी कि एक लड़का है जो कि अलग अलग जगहों पे जा रहा है, एक नदी को कवर कर रहा है, उससे लोगों की कहानी है और लोगों की उससे कहानी है। उस कहानी को मैंने निकाला, एक 5 पार्ट की मैंने सीरीज की अलग अलग, उस पे उस नदी के कैसे उसको धीमे धीमे खत्म किया जा रहा है, या फिर कैसे वो बहुत ज़रूरी थी, उसमें किसानों का एंगल था, उसमें आम लोगों का एंगल था, कैसे एक पूरा समाज उसके इर्द गिर्द बस गया, बांग्लादेश में उसमें कहानी ऐसी है जो कि बांग्लादेश से कुछ शरणार्थी थे उनको ला करके वहां से फेंक दिया गया उस जंगल में, उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो नदी थी, तो उससे उनकी जो आगे की जनरेशन थी वो जी पाई, क्योंकि उन्होंने उसी से खेती करना शुरू किया, उसी से वो उसकी बकायदा पूजा, वो पूजा करते हैं हमारे यहाँ नदियों को, वैसे ही पूजा जाता है नदियों को, जमीनों को पूजा जाता है। तो ये उसका एक मतलब वो हमें कहानी मिलेगी कैसे वहाँ पर एक पूरा बंगालियों का गांव एक लखीमपुर खीरी जैसे यूपी में बसा हुआ है और उस नदी किनारे, और उसके लिए इतना बहुत महत्वपूर्ण है वो। तो इस तरह की कहानियाँ मैंने कवर की और लोगों के पास वो पहुंची, और वो है मुझे ख्याल आता है कि फिर नदियों से मेरा ऐसा जुड़ा हुआ कि नदियों के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती थी वो मुझे इतना वो कर देती। मुझे याद आता है कि 2019 का इलेक्शन था और हमारे वहाँ एक सरयू नदी पड़ती है, ये तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस नदी को क्रॉस करके एक जब अंदर जाते हैं तो एक गांव पड़ता है, तो जब हम ये दूसरी कहानी है, ये उससे उलट कहानी है, मैं एक बस ये जोड़ रहा हूँ कि कैसे नदियों के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो कितना डिस्कनेक्ट होते हैं, उसका उसकी मैं कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि उनको बाढ़ भी झेलनी पड़ती है और तमाम चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो जब मैं उस गांव पहुंचा, 2019 का इलेक्शन था, हम ये जानने पहुंचे थे कि आपकी जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्या चाहते हो, सरकार आने वाली है उससे क्या मतलब किस पे आप वोट करोगे, उन सब तमाम चीज़ों के, जब हम वहां पहुंचे हैं तब उनको पता चला है कि ऐसा कुछ इलेक्शन भी हो रहा है देश में, ये हमारे पहुंचने से उनको पता चला कि देश में इलेक्शन हो रहा है, और वो खुद हमसे पूछ रहे हैं कि अच्छा ऐसा कोई इलेक्शन हो रहा है, कहाँ वोट डालना है, क्या करना है, ये सारा सिस्टम जो है हमारा जो कि पूरा वो होता है प्रचार तंत्र लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन, तो सारा कुछ फेल है। हम वहाँ पर अपनी बाइक को एक बोर्ड पे लाद करके वहाँ पहुँचे हैं, हम आगे उसको अपना चला करके वहाँ गए हैं, उसके बाद उनको पता चला है कि इस तरीके का, वो बाद में वो खबर एक हमने यहाँ पे गाँव कनेक्शन लगाई थी, बाद में वॉशिंगटन पोस्ट में और हर जगह उसको कवर किया गया। तो इस तरह से धीमे धीमे वो हुआ कि ये वो कहानियाँ थी जो मैं करना चाह रहा था, और ये वो भारत था जो आज भारत की बात हो रही है वो मैं दिखाना चाह रहा था, वो मैं उस भारत को मैं दिखा रहा था, और फिर धीमे धीमे ये आगे बढ़ता गया।
नहीं बिल्कुल, आपने मतलब जो आपका ये आपकी जो ये स्टोरी मतलब रही है, जर्नी जो रही है, उसमें बहुत कमी है जो गांव की इतनी डिटेल में लग के पिक्चर जो है बाहर की दुनिया के सामने रख रहे हैं। जैसा आपने कहा कि जो चल रहा है मीडिया में उसी में मेजॉरिटी सब कुछ खपत हो रहा है। तो खैर, आपने आपने ये सब जब कर रहे थे, आपने डेटा बेस्ड किया, आपने रियलिटी को दिखाने लगे, तो आपके जो व्यूज होंगे वो गवर्नमेंट के क्रिटिकल भी होते ही होंगे, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है और जो सरकारें दिखाना चाहती हैं उनमें हमेशा बहुत फर्क होता है। तो जब ऐसा होता है तो आपको कभी प्रेशर फील हुआ कि जैसे आपको कंफर्म करना हो जो गवर्नमेंट चाह रही है, या उसको अपने ओपिनियंस को, अपनी जो आपकी स्टोरी है उसको डिल्यूट करना हो, ऐसा कुछ प्रेशर्स फील होते थे?
कहानियां बहुत हैं, सुनने को अलग अलग मिलती हैं। उसमें से एक कहानी है कि कुछ ऐसे प्रदेश में किसी सूचना विभाग में कुछ जर्नलिस्ट की एक लिस्ट बनी कि अच्छा। ये इस लिस्ट में इस इन लोगों को ट्रैक करना है, ये जो खबरें करते हैं वो। तो उससे क्या होता है, उससे बाकी के जो अधिकारी होते हैं वो आपसे बोलने से कतराने लगते हैं।
अच्छा।
तो हाँ, तो ये उस लिस्ट में वैसे नाम आ जाना, तो किसी अधिकारी का मुझे कभी फोन करना कि ये तुम मतलब कर रहे हो ठीक नहीं है, थोड़ा सा इसको इसको मतलब खबर को इस तरीके से हो सकता था, खबर अच्छा। का ये भी एक एंगल है, तो खबर का एंगल उनकी ओर से बताया जाना, ये हाँ। भी इस तरीके का भी मतलब बताया गया कि जैसे हम जब भी खबरें करते थे ज्यादातर उसमें बहुत तो उसमें नहीं, लेकिन ज्यादातर में जो जहां पर उनको बल पड़ रहा होता था, जहां पर उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी हमारी छवि पे डेंट हो रहा था, तो किसी ना किसी अधिकारी का, उससे संबंधित अधिकारी का फोन जरूर आता था। एक बार वो ये जरूर कहते थे कि इस पर जो है ये एंगल से खबर की जा सकती थी
जी।
और इसको हमने ये किया था, इसको भी शामिल करना चाहिए था। हालांकि जब वो ग्राउंड पे हम पता करते थे वैसा कुछ होता नहीं था, लेकिन वो बस ये चाहते थे कि थोड़ा सा पॉजिटिव उनकी ओर से चीजें हो। तो ये इस तरह के दबाव तो हाँ दबाव तो रहते हैं, इस तरह के दबाव तो काफी रहते हैं, संस्थानों से भी रहते हैं, संस्थानों से भी रहते हैं। अब तो संस्थान भी बहुत कम ऐसे हैं जो कि आपको फ्रीली लिखने देते हैं। ये बहुत मुश्किल घड़ी है, खास करके अभी के उसमें परिप्रेक्ष्य में,
राइट right.
तो वो है, आप अब हमने देखा है कि कैसे हम एनडीटीवी को फॉलो करते थे, अब देख रहे हैं कि कैसे एनडीटीवी से लोग निकल रहे हैं,
अनफॉलो भी कर जो भी है।
हाँ, तो ये भी मतलब मेरा बस ये नहीं है कि एनडीटीवी एक बस एक मैं इस पर से उधार दिया कि बहुत से लोगों के जहन में है, उसके अलावा बहुत से फ्री मीडिया है जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन सब पे बहुत दबाव है। आप वायर की बात कर लीजिए, आप अभी तमाम अलग न्यूज क्लिक की बात कर लीजिए, आप देखिए कैसे उनको ट्रीट किया जाता है हमारे यहाँ पे, सिर्फ वो क्योंकि वो फैक्ट बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, आप कमियां बता रहे हैं, ये वो है।
बिल्कुल। तो जो भी, जैसा आपने कहा कि जो अभी का करंट मीडिया का जो लैंडस्केप है इंडिया में, उसमें उस सबके चलते प्रेशर्स की तो कोई कमी नहीं है, मतलब जमीन से मुद्दों का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है उनकी कहानियां बताने का, मीडिया हाउसेस से मेरो सारे इंस्टीट्यूशन से दूसरे तरह के प्रेशर है कि वो कहानियां ना बताई जाए। इस सारी जद्दोजहद में आपका मतलब जो जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी को आप बचा के कैसे रखते हैं, उसको फिर इंटैक्ट कैसे रखते हैं, मतलब वो क्या फोर्स है, कहां से आती है वो?
वो फोर्स बताने में एक और प्रेशर की मैं बात करूंगा, उसके बाद उस फोर्स पे आता है। प्रेशर तो इतना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा है।
सही है, सही है।
अब आप इस प्रेशर को आप समझ लीजिए कि प्रेशर कितना है। हाँ। तो खैर वो तो एक अलग बात है, वियतनाम जाके कर दिया उन्होंने।
हाँ।
लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कुछ लोग हैं जो कि अभी भी आपको लिखने दे रहे हैं, पढ़ने दे रहे हैं, और ऐसे संपादकों से मैं मिल पाया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं मतलब किसी एक का ऐसे नाम लेकर के वो नहीं करूँगा, लेकिन इतनी हिम्मत है लोगों में कि अभी भी कि वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिनके साथ में उठना बैठना होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो कोई है जो कि चाह रहा है कि चीज़ें लिखी जाएँ, चीज़ें पढ़ी जाएँ, तो ये वो वैसा वैसा हिसाब किताब है।
तो उनसे मोटिवेशन मिलती रहती है, उनसे डायरेक्शन हाँ, मिलती रहती है।
बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनके साथ में आपके होने से ही ये लगता है कि कुछ ठीक हो रहा है, कुछ जो आप कर रहे हो वो ठीक है
जी।
ये वो है,
ये भी अच्छा कहा आपने, मतलब किसी और के खड़े रहने से आपको हिम्मत मिली और आपके खड़े रहने से औरों को बहुत हिम्मत मिल रही होगी, आई एम श्योर। वो भी जो सिलसिला है छोटा होता है लेकिन चलता तो ऐसे ही है मेरे ख्याल से।
तो ऐसे चलता है।
हाँ, तो आपने ये जो प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, और मतलब इनका आपके पर्सनल लाइफ पे भी कुछ ना कुछ असर तो होता ही है, कुछ ना कोई रिपरकशंस पर्सनल लाइफ में तो आते ही होंगे, तो आप उनसे फिर कैसे डील कर पाते हैं, जैसे अगर ये सारी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में आने शुरू हो जाएं किसी टेढ़े आड़े टेढ़े तरीके से?
हाँ बिल्कुल, इसके आप इस तरीके से मतलब जो डील होता है वो ये होता है कि हर चीज में बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। कहीं से भी आप मतलब इस उसमें आप दिक्कत में नहीं हो सकते हैं, या फिर आप चीजें खराब, जैसे होता है ना कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना करप्ट है कि आप आपको आपको करप्ट कर देगा, लेकिन आपको करप्ट नहीं होना है इस उसमें बीच में, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी करप्ट हो गए तो वहां पर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि लोग खोज रहे हैं तो कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकाल ली जाए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वो कर ली जाए, तो वहां पर थोड़ा सा वो है। पर्सनल लाइफ में हाँ एक फिक्र होती है कि मतलब जब इस तरीके का आप चीजें करते हो तो देखिए, एक तो पहली बात कि बहुत उस हिसाब से सपोर्ट नहीं होता है। आप जो मैंने अभी बात कहा कि वो दो तीन लोग चार ही लोग हैं इनको आप देख करके वो कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत एक मेजोरिटी में अगर आप कुछ होते हो, जैसे हमने देखा है लोगों को कि यहाँ पे कैसे सफर करते हैं, जब अगर एक उन पर FIR हो जाती है या फिर एक कोई चीज हो जाती है, उसके बाद कितने लोग उनके साथ में खड़े होते हैं। हमने वो देखिए, एक सोशल मीडिया में खड़े होना और एक साथ में खड़े होना, देखिए अंतोगत्व जो है झेलना आपको और आपके परिवार को ही है, तो ये पर्सनल आप तक ही आता है। तो इन सब चीजों को मैनेज करते हुए एक डर तो बनता ही है, और बहुत ज्यादा डर है ये इन इन सब चीजों का। आप मतलब हमने मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमने देखा है कि लोगों को खबर बताने के लिए अलग अलग उसमें राज्यों में FIR हो जाती है। अगर मान लीजिए एक FIR यहाँ हो जाती है और एक FIR असम में हो जाती है तो आप तो घूमते ही रह जाओगे।
बिल्कुल, हाँ हाँ, वो एक टूल बन गया है फियर जनरेट करने का। हाँ
हाँ बिल्कुल, आपके पास आपके ऊपर दो FIR हुई, आपका पूरा टाइम जो है वो उसी में डील करने में निकल जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल जी,
तो आपको कहीं से भी जो भी मतलब वो है आपको मतलब गलत नहीं होना है। आपको एक एक चीज फैक्चुअल होनी है, उसके बाद भी हो सकता है कि आपको इस तरह से घेर लिया जाए
हाँ।
लेकिन कम से कम आप प्रयास करें कि आप सारे के सारा चीजें फैक्चुअल हो सके तो वहां पे।
जी जी, तो आपने मेंशन किया कि आप यूपी से हैं और आपने लखनऊ का भी मेंशन किया, तो ये जो बैकग्राउंड है आपकी, इसमें आपके जर्नलिज्म और जो सोशल इश्यूज पे जो आप जिस तरह से सोचते हैं उस पे कुछ असर हुआ, वो कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे बैकग्राउंड का?
बहुत है इसका बहुत असर है। मैं इसको ऐसे ही कहूंगा कि अगर कोई शहर में रह के जाता है जो पत्रकारिता जिसने की है वो अगर वो उन क्षेत्रों में पहुंचता है तो उसका देखने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि वो बहुत ही नया देखे, हो सकता है कि उसके लिए वो खबर हो जो कि हम आम दिन में जी रहे हैं, मतलब एक होता है कि वहां पर वो उस चीज को महसूस कर ले कि उसके लिए वो खबर हो जाए। और जो लोग बाहर से, मान लीजिए कि बाहर से उस क्षेत्र में जाते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि दिल्ली से कोई जा रहा है या बॉम्बे से कोई जा रहा है या फिर किसी और क्षेत्र से जा रहा है, वो हमारे लिए हो सकता है कि जैसे हमारे लिए वो जगह नहीं है, उनके लिए वो जगह नहीं हो सकती है। और एक चीज और है कि हो सकता है कि हम जिस चीज में बहुत रूटीन में ढले हैं, मतलब हमारे लिए जो खबर नहीं है उनके लिए वो खबर हो जाए। लेकिन इसमें एक है कि वो उन चीजों को पकड़ेंगे जो कि ऊपर उनको नजर आ जाएगी। जैसे एक होता है ना कि हो सकता है कि उनके लिए इश्यूज मतलब उतने गहरे वो उस चीज को समझ ना पाए, लेकिन हमारे साथ में क्या होता है, जो भी प्रदेश का रिपोर्टर होता है, जो भी जिले का रिपोर्टर होता है, जो भी कस्बों का रिपोर्टर होता है, उसके साथ में क्या होता है, वो उन चीजों में बहुत ही रमा होता है, घुला होता है, उसको उसकी जो एसेंस है वो उसको पूरी पूरी पता होती है कि इस खबर का असली जो है वो ताल्लुक कैसे है। तो उसका असर होता है। आप जब क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं, उसमें जाते हैं, तो वहां से जो आप खबरें निकाल कर लेके आते हैं, हो सकता है कि वो खबरें बहुत से लोगों को मिले ही नहीं, क्योंकि वो एक एक दिन के लिए आएंगे या कुछ दिन के लिए आएंगे और फिर वो ऊपर अपना देख करके निकल जाएंगे। आपके पास वक्त है कि आप उसको बिल्ड कर ले जाओ, आपके पास साधन है कि आप आसानी से वहां पहुंच जाओ, तो इन इन सब चीजों में तो फायदा आपको मिलता है और आपके कनेक्शन बनते रहते हैं।
कुछ लोगों की बैकग्राउंड तो उनको ये भी मजबूर करती है कि फ्लड्स को कवर करने के लिए सड़क, जो साफ सुथरी सड़क है उसको छोड़ के एक खड्डे के अंदर पानी में खड़े होकर भी रिपोर्ट कर लेते हैं। तो आपने
बिल्कुल सही कहा, ऐसा भी है।
हाँ, वो भी हमने देखा ही है, हमने सबने देखा है बहुत अच्छी तरह से वो। तो आप देखिए इस सारे में जो आप बातें बता रहे हैं, जैसे आपने वो बोट में साइक मोटरसाइकिल डाल के नदी पार की, या इवन देहात में वैसे ही इतना काम करना, उसमें स्ट्रेस की तो कोई कमी नहीं है और रिस्क की कमी नहीं है इस सब में, जो आपके प्रोफेशन के साथ भी आते हैं और जिस तरह के उस प्रोफेशन में भी जो आप आगे जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें भी काफी आते हैं, क्योंकि डाटा रियलिटी सच्चाई वो सबके साथ खड़े होने में एक अलग ही रिस्क और स्ट्रेस है। तो और जो कंट्रोवर्शियल स्टांस, जो आप बहुत ही कंट्रोवर्सीज उसके साथ उभर के भी आती ही हैं क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे हैं, तो उसको आप कोप कैसे करते हैं एट अ पर्सनल लेवल, आप उसको डील कैसे करते हैं?
अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो ये तो मतलब देखिए, आपको या तो आप हल्के पड़ सकते हो इस माहौल में, या तो आप उसको डट के सामना कर सकते हो इस माहौल में। मेरा जो तरीका है, सबका अलग अलग अपना तरीका होता है, मैं इसका डट के सामना करता हूँ और कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी खास करके जिस क्षेत्र में मैं हूँ, मतलब जहाँ मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, वो मुझे कहीं से भी मतलब परेशान कर ले जाएगा किन्हीं बातों को लेकर, क्योंकि उतना कैपेबल मैं भी कहीं ना कहीं से हूँ और चीज़ों को मैं डील कर ले जाऊँगा। ये मेरा अंदर का कॉन्फिडेंट है कि मैं इस चीज़ को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे मतलब कहीं आप परेशान नहीं कर पाओगे। हाँ, बशर्ते ये एक बार जब सिस्टम ही आपके पीछे लग जाए तो वो एक अलग मसला है। हाँ। मैं अभी बहुत ही व्यक्तिगत पर्सनल उसकी बात कर रहा था कि अगर हम कोई खबर करते हैं तो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स हमारे साथ होते हैं, वो अपने में ही उनकी एक पहचान होती है, हमारी खुद की अपनी पहचान होती है, तो लोग थोड़ा सा तो इन सब चीज़ों पर आपको वो करने डरते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है कि आज के डेट में रिस्क में अपनी लाइफ को डालते हैं वो कस्बाई पत्रकार होते हैं। उनकी उनके उनके साथ में क्या होता है कि उनकी उतनी पहुंच नहीं होती है। हमारे लिए इजी है कि हम एक स्टेट की राजधानी में बैठे हैं, 10 अधिकारियों को जानते हैं, तमाम चीजें हैं, तो हमारा हमको किसी को फोन मिला देंगे, कुछ हम कर देंगे। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं क्योंकि उनको वहां पे डील करना पड़ता है लोकल उसमें। तो ये वैसा है, मतलब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ईजी है एक जिले में बैठकर वो करना, लेकिन जो स्ट्रिंगर्स हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, और उसको हम कभी भी जो उनका स्ट्रेस है या फिर उनकी जो चीजें हैं उस पर हम बात नहीं करते हैं। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने मुझसे पूछा तो मेरा जो ख्याल जाता है कि मुझसे ज्यादा टफ उनकी लाइफ है, तो मैं उनको देख कर भी एक थोड़ा सा वो है कि यार ये लोग इतना डील कर रहे हैं तो
हम यह नहीं, ये भी एक मैकेनिज्म है कोप करने का कि वो जैसे होता है कि चलो हमारा अपना, अगर हम दूसरों का स्ट्रेस देखते हैं, दूसरों की जो दर्द है वो देखते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी खुद का जो इश्यूज हैं, खुद की जो प्रॉब्लम है उसमें डील करने में हेल्प मिलती है। वो भी एक एक एक, एक तरह का कोपिंग स्ट्रेटेजी है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसा ही है, ये वैसा ही है। कभी इस पर ध्यान नहीं गया होगा आपके उससे, लेकिन ये कैसा है कि हम सब एक दूसरे से इतना जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, मिले हुए हैं, तो अगर कुछ वो होता है तो सब एक वो बातचीत में रहता है, कांटेक्ट में लोग रहते हैं, तो ये वैसा है। तो इन सब चीजों से वो है। अब इसके मतलब छोटी सी कहानी मैं ऐसे ही बताऊंगा कि कहानी क्या, मतलब कि जैसे अब आप लखनऊ में ही हैं, लखनऊ में अगर आप किसी जैसे अगर कोई इवेंट हो रहा है, कुछ और हो रहा है, मतलब उसमें अगर किसी पत्रकार से अगर आपने बदतमीजी कर दी तो वहां पे इतनी एकता है, मैं इस एकता को बाहर नहीं पाता हूँ कि दूसरे पत्रकार भी उसको छोड़ के उठ जाएंगे।
अच्छा,
तो वहां से ताकत आती है कि आप बिल्कुल आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई कमजोर है, आप मतलब उस तरीके से
तो अकेले नहीं है, तंत्र बड़ा है लेकिन आप भी अकेले नहीं है।
तो ये वैसा है।
आप जर्नलिस्ट हैं तो आप लोगों की कहानियां बताते हैं, जमीनी मुद्दे जो होते हैं उसकी कहानियां बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन आपके बारे में जो लोगों को, आपके फॉलोअर्स को, या आपकी जर्नलिस्टिक जर्नी के बारे में जो भी आपका अभी तक का रहा है सफर पत्रकारिता का, या आपके पर्सनल लाइफ में जो उनको, आपके फॉलोअर्स को मालूम नहीं है, उनको अवेयर नहीं है, लेकिन आप शेयर करने में हिचकिचाए ना, तो ऐसी कोई चीज आप शेयर करना चाहेंगे, बताएंगे?
मुझे वीडियो पे आने पे बहुत ही वो लगता है, हिचक लगती है। मैंने 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 बहुत से वीडियोस किए हैं लेकिन ये हिचक जाती नहीं है, ये हमेशा रहता है। तो जब भी कहीं पे मुझे स्टार्ट करना होता है तो मैं बहुत ही उसमें रहता हूँ, अफवाह में रहता हूँ कि कैसे इसको वो किया जाए। तो एक तो जी. एक तो ये है कि मतलब इस क्षेत्र में अभी भी इतने साल देने के बाद भी इस चीज़ से नहीं मतलब बहुत फ्रेंडली नहीं हो पाया हूँ कैमरे के साथ में। तो इसको थोड़ा सा वो है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद लोगों को उतना आभास नहीं होता होगा जब मैं बोलता हूँ, या फिर वो इसी वजह से मैं बहुत ठहर ठहर के बोलता हूँ। जब आप देखेंगे कि मैं बहुत जैसे आम उसमें मैं शायद थोड़ा सा इससे तेज हूँ, मैं जब कैमरे में बात करता हूँ तो थोड़ा सा इससे कमतर हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत एक जहन में कहीं ना कहीं वो रहता है कि उसका मुझे डर है। तो ये है, तो ये वैसा है कि
तो जंतर जंतर तंतर के डर से तो आपने डील कर लिया, लेकिन कैमरे का डर अभी 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 बरकरार है। तो
हाँ, वो है जी। इतने दिनों के बाद मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग एक आपको वो बताता हूँ, मेरी शुरुआत कैसे हुई थी। वो एक पूरी एक कहानी है। मतलब मुझे ख्याल आता है कि मैं कॉलेज से निकला एक इंटर्नशिप करने गया, मतलब बहुत तमाम लोग की कहानियां होती है, उसमें से मेरी भी कहानी है कि मैं इंटर्नशिप करने गया एक उसमें, और अखबार में वहां पे मुझे बताया गया कि आपको क्राइम रिपोर्टिंग करनी है और उनके साथ में आप लग जाओ। अब मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं, वो छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो एक आदमी ने मुझे बाइक बैठाया पोस्टमार्टम जो हाउस था वहां पर ले जाकर उसने कर दिया, उसने कहा कि यहाँ पे जितनी लाशें हैं तुम गिनते रहना। अब मेरे पास कुछ करने को नहीं, मैं मतलब मुझे दिन भर में मैं तो जो सोच के आया था उससे एक अलग जुदा मतलब मुझे वो पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि आप लाशें गिनते रहना, मैं ये कैसा काम है, मतलब सुबह से बैठो और शाम तक बस लाशें गिन रहे हो। दो दिन तीन गया, मैं अंदर चला गया तो अंदर देखा तो मैंने वो मतलब वो चीर फाड़ के जैसे वो रखते हैं वो, तो वो उस दिन तो फिर मेरी हालत ही खराब हो गई कि मतलब कहाँ पर मुझे मतलब ला करके रख दिया। अगले दिन मैं गया, मैं कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, देखा नहीं जाएगा। तो कहे नहीं नहीं तुमको जाना ही होगा, अगर तुम्हारा वो काम लगाया गया है वहाँ पर तुम वहाँ पर जाओ, बताओ हमसे कि कितने एक्सीडेंट वाले केसेस आए क्या है, तो वो आप हमें बताएंगे, ये आपका काम है। मैं वहाँ पर गया था तो वहीं से मेरी मतलब मैंने एक तरह से ये मैं कहता हूँ कि मेरी हिम्मत टूट गई थी, लेकिन फिर चार पांच दिन बाद मुझे वहीं से अपनी एक बायलाइन मिली। एक आदमी ने मतलब जो उसकी पत्नी थी उसके बच्चे का वो उस मॉडल में ऐसा कुछ वो लेकर आया था, मुझे वो बहुत ही वैसे याद नहीं रहा, लेकिन उसमें जो कहानी वो ये थी कि उसकी माँ ने अपनी जो उसकी सास थी, उस आदमी की जो सास थी, अपनी बेटी के पेट पर लात मार के उस बच्चे को मारने की कोशिश की थी। तो ये जो कहानी थी, ये कहानी अगर मैं वहां पर ना बैठता तो मुझे वो मिलती भी नहीं। तो वो मुझे ख्याल आया कि आपके जो कई बारी जो सीनियर्स होते हैं वो आपको बैठाते हैं तो उनको पता होता है कि क्या किस लिए आपको ट्रेन कर रहे हैं, किस लिए चीजें, ये एक ऐसी ट्रेनिंग थी। तो इस तरह के वाक्य हुए हैं, बहुत से वाक्य हुए। तो वो एक ये वाक्य था कि मैं दिन भर बैठ के लाशें गिनता था।
उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी।
हाँ।
इसी के अगर आगे चलें तो, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं आपकी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल नया है। और आई एम श्योर कि हम खबरें तो बहुत सुनते हैं, आपके चाहने वाले आपसे खबरें भी बहुत सुनते हैं, लेकिन आपके बारे में जानना थोड़ा मतलब मुझे तो मजा आ रहा है, होपफुली सुनने वालों को भी मजा आ रहा होगा। उसमें आपका जो आपने जो इतनी स्टोरीज की हैं, जैसे आपने अभी एक बताई, पहले आपने वो इलेक्शंस वाली बताई, तो इन स्टोरीज का कोई आपको कोई ऐसा और याद आता हो जिसमें कि कोई अनएक्सपेक्टेड लेकिन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ हो, किसी की लाइफ के ऊपर हो गया हो, या कोई इशू इतना इम्पोर्टेंट बन गया हो क्योंकि आपने वो स्टोरी की, तो वो शेयर करना चाहेंगे जरा?
जैसे मैं इंडिया स्पेंड में था, अभी मैं नहीं हूँ इंडिया स्पेंड में, तो मैं इंडिया स्पिन में था और हम लोग इसी इलेक्शन में जो यूपी इलेक्शन था हम कवर करने गए थे बनारस से हम लौट रहे थे, कुछ स्टोरीज हमने कवर की थी और हम लौट रहे थे सुल्तानपुर के पास में। आप जैसे जानते होंगे कि ये एक वो गया है, क्या नाम है, जो नया एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है हमारे यूपी में, बहुत से लोगों को पता होगा, इलेक्शन के वक्त में मतलब इसकी बहुत चर्चा थी, अभी भी वो है। तो उसके अंदर से ना एक अंडरपास जाता है, वो अंडरपास नहीं बना था
जी।
उस वजह से क्या हुआ था कि जो बच्चे थे, बच्चे सड़क के इस पार थे उनका गांव, और जो स्कूल था वो सड़क के उस पार था, तो पूरे बच्चों की पढ़ाई पे असर हो गया था, वो जा नहीं पा रहे थे सरकारी स्कूल में, क्योंकि वो अंडरपास जो था उसमें मट्टी पड़ी हुई थी, गिट्टी पड़ी हुई थी, वो चालू नहीं हुआ था। हमने उस खबर को दिखाया और उसको दिखाने के बाद में ये वही जगह है जहां पर पीएम मोदी आए थे और वो टचडाउन हुआ था जो एयरफोर्स का और तमाम चीजें, ये वही जगह है, ये वो उसी वही अच्छा। हाँ ये वही गांव है। तो हमने खबर दिखाई, उस खबर को दिखाने के मुझे लगता है कि एक दिन के अंदर अंदर वहां पे बुलडोजर, हालांकि अलग इसमें टर्म में यूज होता है, लेकिन वहां पे बुलडोजर लगा के उसको सब साफ किया गया और वो अंडरपास अच्छा। चालू हुआ, बच्चे जो है वो स्कूल जा सके उस तो इस तरीके के असर होते हैं। एक और असर हुआ कि वो वहां पर जो किसान थे उनको मुआवजा नहीं मिला था, उनसे जमीनें ली गई थी, ये खबर थी कि क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं तो वहां पर समतल करके उनकी फसलें लगी हुई थी, समतल करके और गाड़ियों के रुकने की उनकी जो व्यवस्था जैसे होती है, एक जैसे भी राष्ट्राध्यक्ष जहाँ पहुंचते हैं तो वहां पर जो आसपास में जो चीजें होती हैं तो ये तो उनकी जमीनें ली गई थी, उसका मुआवजा बहुत लंबे वक्त में हमारी खबर के बाद मुआवजा भी उनको मिला था। तो ये इस तरीके का
राइट। तो आपकी कहानियों के असर में भी बुलडोजर चला है, लेकिन वो ऐसे काम के लिए चला है जो काफी बढ़िया था और लाभदायक था। अच्छा, अगर बुलडोजर चले तो ऐसे चले बेसिकली। हाँ,
बिल्कुल 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 ऐसे ही चलना,
नहीं तो पाग खड़ा ही रहे, वही बेहतर है। तो अभी इसी के जुड़ता एक और मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि क्योंकि आप ये तो आपने पत्रकारिता की, लेकिन आपको ऐसा कब लगता है कि जैसे पत्रकारिता करते करते जो वो काम है एक तरह का एक्टिविज्म बन जाता है, क्योंकि वो एक वो जो एक्टिविज्म की रियलिटी है, सोशल चेंज की जो रियलिटी है उसमें वो तब्दील होना शुरू हो जाता है, इसमें क्यों कोई खास बाउंड्री दिखती है आपको कि बस मुझे यही है पत्रकारिता, यहां तक ही जाना है, क्योंकि इसके आगे एक्टिविज्म की लाइन शुरू हो जाती है, सोशल चेंज की लाइन शुरू, वो मेरा काम नहीं है, ऐसा कुछ आपको लगता है?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमें एक लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको बस खबर दिखानी है, लोगों की मदद नहीं करनी है, ऐसा आपको कई बारी पत्रकार पहुंचते हैं और वो खबरें दिखाते हैं, उसमें देखिए दो दो दौड़े बढ़ जाते हैं, वो किसी पीड़ित के लिए पैसा मांग लेते हैं। तो बहुत से पत्रकार ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये काम हमारा नहीं है, पैसा मांगने का या फिर वो। मैं दूसरी तरफ हूँ, मुझे लगता है कि अगर किसी की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उतनी पहुँच है, उतनी रीच है, तो हमें करना चाहिए, हम क्यों ना करें। तो बिल्कुल, आप देखिए, अंतोगत्व हम हैं यहाँ पर इसलिए कि देश में कुछ बेहतर हो सके, इसे मैं मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा कि हम अपने ओर से कुछ ना कुछ ऐसा दे सकें कि हम अपने देश में कुछ बेहतर कर सकें, चाहे वो पॉलिसीज पे हम सवाल उठा सकें या फिर किसी व्यक्ति के व्यक्ति विशेष के जीवन में कुछ बेहतर कर सकें। वो हम काम कर रहे हैं देश के लिए ही, और इसमें हमारा आयाम अलग अलग तरीके का हो सकता है। हो सकता है कि कई बारी हम किसी पार्टी के साथ जुड़कर काम करें, हो सकता है कि हम किसी मतलब क्या नाम है, किसी एनजीओ के साथ जुड़कर काम करें, लेकिन फील्ड में जो है अगर हमने कुछ पाया है कि कुछ कमी है तो उसको हमें बेहतर बेहतर करना चाहिए। इसमें मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि हम बीजेपी के नेताओं के साथ कुछ बेहतर कर पाए, हो सकता है कि हम कांग्रेस के नेताओं के साथ कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन मतलब होना चाहिए कि जमीन पर जो है वो चीजें पहुंचनी चाहिए, वो लोगों तक असर होना चाहिए। मतलब इसका एक डिस्कनेक्ट है, मैं आपको 5 मिनट और लूंगा कि मतलब ये वैसा है कि हालात ये है कि एक किसान, मुझे ख्याल आता है पिछले इस मार्च की बात है या इसके आसपास की बात है, एक किसान जो है वो झांसी में वो जाता है तहसील में और उसको अपनी जमीन की नपाई करनी होती है, उससे घूस मांगा जाता है, वो एक बहुत ही लंबे प्रोसेस से पहले ही वो लड़ा होता है और उसे वो घूस से मांगी जाती है, उसके पास वो खुद ही इतना लाचार है तमाम चीजें हैं कि उसको वो घूस नहीं दे पाता है, और उसके वो जो उससे मतलब 2,500 रुपये मांगे जाते हैं, उस 2,500 के बदले वो जानते हैं क्या करता है, वो अपनी जान दे देता है।
अरे बाप रे, बताइए।
वो आता है, वो अपने उसी खेत पर अपने ही गमछे से वो आकर के लटक जाता है। अब हालात ये हैं, अब इस हालात में अगर हम सिर्फ खबर बताने पे तुले रहेंगे फिर तो खबर बताते रहिए, कुछ वो नहीं है। हम मेरा वो है कि अगर मुझसे ये हो पाता, अगर मुझे पहले जानकारी मिल पाती तो शायद मैं कोशिश करता कि उसे वो घूस न देनी पड़े, उसके बाद भी उसकी नपाई हो सके। मेरी जिम्मेदारी ये है, या फिर किसी भी की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। तो ये दो धड़े हैं, दो धड़े अपने अलग अलग बात करते हैं। कुछ लोग उनका भी वो है कि उन्हें बस रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट करना है। हमें रिपोर्ट से थोड़ा सा आगे करना है।
ठीक ठीक जी। इसमें जो जिस चैनल पे हम ये बात कर रहे हैं वो उसका नाम जैसे हमने पहले भी कहा द फोर डायमेंशन है, उसमें जो एक डायमेंशन हम ये बात मतलब हमारा जो अंडरकरंट है इन बातचीत का, ये भी हम हाईलाइट रखना चाहते हैं लोगों के सामने कि जो हम काम कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं, इन सबको अंजाम देने के लिए साइंस का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। ये हमारा मानना है कि हम और उसको हम दरनकार करके रखते हैं क्योंकि बातें और बहुत होती हैं। मैं आपकी जो जर्नी रही है, आपके आपके जहन में ऐसा कुछ आता है कि भाई ये साइंस ने इतना कुछ ये था तो मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, या उसने ऐसे रास्ते खोल दिए, कुछ आपके दिमाग में ऐसी बातें कुछ आ रही हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे?
न्यू मीडिया पूरा साइंस पे पूरा। आप ये आप इसको ऐसे देखें कि अगर आज के वक्त में सोशल मीडिया ना होता तो मेरी खबरों को उतनी रीच ना मिलती। मतलब बहुत से लोग मेरी तरह और खबरें करते होंगे, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी एक रीच है सोशल मीडिया पे, तो उसका मुझे एक फायदा मिलता है। हम कभी भी कहीं पे भी ग्राउंड पे हम चले जाते हैं, हम एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। मतलब ये इतना बूम हुआ है, इसका असर ही है कि ये खबरें आ पा रही हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे हाथ में हर 24 घंटा कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम कहानियाँ हम बता सकते हैं लोगों तक में। तो ये तो इसका असर तो है, इसका बिल्कुल असर है। अगर ये साइंस ना होता तो शायद खबरों को लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही दिक्कत होती। ये एक आप अगर मतलब मैं एक कोई कहानी कहूँगा तो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कहानी कह के मैं छोड़ दूंगा, मैं उसके पीछे का एक कहीं ना कहीं से अगर कोई भी डेटा उपलब्ध होगा तो मैं वो खोजने की कोशिश करता हूँ कि वो डेटा लोगों तक पता चले कि अगर जैसे अगर किसी ने आत्महत्या कर ली, मान के चलते हैं अभी मतलब जैसे कि अगर आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर ली, तो मैं बताऊंगा उनको कि 18 से 20 के बीच में लगभग 9000 युवाओं ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी से। मतलब ये मेरा काम है। अब वो जो चीज़ है उसको रिसर्च करने के लिए अब आप देखेंगे कि जो भी आपके पास जो भी टूल होते हैं अलग 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 अलग, वो बिल्कुल अगर ये साइंस ना होता तो चीज़ें आसान बिल्कुल ना होती। तो ये वैसा है।
तो आपका कहने का मतलब है कि जो आजकल बाबा लोग कहते रहते हैं कि 4000 साल पुराना, 3000 साल पुराना जो औषधि बेस्ड ट्रीटमेंट चलता है वो ही सही, अगर वो हम जर्नलिज्म पे अप्लाई करते तो हम कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते रहते तो वो शायद पत्रकारिता नहीं हो पाती आज के डेट में।
मैंने इस पर एक स्टोरी की है, आपको अगर आप लोग भी अगर देखना चाहें तो उसे देखिएगा जरूर। ये झारखंड में झाड़फूक का बहुत होता है, मैंने वहां पर जाकर कैसे उसका हेल्थ का, जब मैं गया था तो आपसे भी मैंने बात की थी, कैसे उसका हेल्थ पे क्योंकि हमारे ग्राउंड पे जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही कम है, तो उसके वजह से कैसे जो लोग हैं वो इसके चंगुल से अभी भी नहीं निकल पाए हैं। तो वो अपने आस पास में जो ओझा और इनके इनके लोगों के बीच में जाते हैं और वही सारी चीज़ें जो आपने अभी कही कि वो सारी चीज़ें करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। किसी की हड्डी टूट गई तो हड्डी जोड़ने का काम भी ओझा कर रहा है, तो
बताइए
तो इस तरीके का। अब वो एक पत्ता उसने बांधा हुआ है, वो जाकर के उससे बात करो तो वो बता रहा है कि 6 महीने से इस पत्ते को मैं बांध करके और वो चल रहा हूँ, वो 6 महीने से उसका ठीक नहीं हुआ वो, और उसकी बुरी बुरी कंडीशन होती जा रही है। तो इस तरह के अंधविश्वास तो है, लेकिन धीमे धीमे चीजें बदलेंगी। तो ये वो है
जी जी। तो आपने बात की डिजिटल मीडिया की, हमने बात की जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, सोशल प्रेशर्स हैं जर्नलिज्म पे, तो इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो इंडियन जर्नलिज्म है अगले 10 साल में किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है उसके बारे में, स्पेशली ये जो इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो उसको मद्देनजर?
मुझे, मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के बाद से ये और ज्यादा टफ होने वाला है, ये और ज्यादा टफ होने वाला है, ये इतना टफ हो जाएगा कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये मुश्किल होगा अगर आपके पास में बैकिंग विदेशी मीडिया की है, जो कि आजकल जिसे एक टैबू बना दिया है कि मतलब ये बना दिया है कि वो आपके खिलाफ ही लिखते हैं आपके जो, क्योंकि वही वही फिर आपसे आपसे रिपोर्ट ले पाएंगे. यहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपसे रिपोर्ट लेने को भी तैयार होगा. हमने हमने देखे हैं बढ़िया बढ़िया पत्रकार जिनको हमने फॉलो किया है वो यूट्यूब पे जाने लगे. तो एक ही विकल्प हमें नज़र आता है यूट्यूब. लेकिन जब यूट्यूब पे भी सारे ही सारे यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे तो फिर कौन कौन सर्वाइव करेगा. तो
बिल्कुल
बहुत बहुत मुश्किल है.
तो यूट्यूब यूट्यूब पे भी कब्जा किया वो भी किया जा सकता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है.
तो
जी
तो ये वो
थैंक यू वेरी मच रणविजय जी. ये तो बहुत ही आपने डिटेल में और आपके जर्नी के बारे में बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें बताई जो बिल्कुल बिल्कुल मालूम नहीं थी. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. अगर आपको फिर से हम शायद तकलीफ दोबारा देंगे तो.
नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके इस पूरे शो में. बहुत ही अच्छा अच्छा लगा कि थोड़ा सा हम उन चीज़ों पर बात कर पाए जो कि आम तौर पर कोई पूछता नहीं है हमसे कि हमारी हमारी कहानियों के पीछे की कहानी क्या है. तो हाँ. है तो अच्छा है, अच्छा
जी. कोशिश यही है द फोर्थ डायमेंशन में. थैंक यू,
शुक्रिया.